अर्पिता जी सीधे घर से बाहर निकल गईं। शान गाड़ी से पीठ टिकाए खड़ा था, उन्हें देखकर वो सीधे खड़ा हो गया। उसने गेट खोलते हुए कहा, बहुत वक्त बर्बाद हो गया, अब जल्दी चलिए, मुझे मीटिंग भी अटेंड करनी है। हम अभी नहीं जा सकते बेटा, उन्होंने गेट बंद करते हुए कहा तो शान उन्हें असमंजस में देखने लगा। अब शादी तो होगी नहीं, फिर क्यों नहीं जाएंगी आप घर? क्योंकि शादी आज ही होगी, उन्होंने फिर से बिना किसी भाव के जवाब दिया तो शान उन्हें हैरानी से देखते हुए बोला, वो लड़का दुल्हा ही था ना, और उसने जो किया उसके बाद भी आप शादी होने देंगी? शादी उनसे नहीं हो रही बल्कि किसी और लड़के से हो रही है। उनके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। उन्होंने शान के आगे कुछ कहने से पहले ही आगे बोलने लगीं, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अंदर बैठिए। वो बहुत गंभीर लग रही थीं तो शान ने कोई सवाल नहीं किया और अंदर बैठ गया। अर्पिता जी भी अंदर बैठ गईं। अब शान ने उन्हें देखते हुए कहा, कहिए बड़ी माँ, क्या बात करनी है आपको मुझसे? बेटा, हम जानते हैं आप हमारी बहुत इज्जत करते हैं और आप कभी हमारी कोई बात नहीं टालते। आज हमने आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे फ़ैसले का मान रखेंगे, हमारे सर को सबके सामने झुकने नहीं देंगे। वो कुछ कहने को हुआ तो अर्पिता जी ने आगे कहा, नहीं बेटा, पहले आप शांति से हमारी बात सुनिए। उनके कहने पर शान शांत हो गया। अब उन्होंने परसों यहाँ जो हुआ सब उसे बता दिया। उनकी बातों के साथ साथ शान के चेहरे के भाव भी बिगड़ते जा रहे थे। अब उन्होंने आज लोगों ने जो कहा और उन्होंने जो फ़ैसला किया वो उसे बता दिया और आगे बोली, हम जानते हैं कि आप शादी नहीं करना चाहते, पर अब हम ज़ुबान दे चुके हैं। अगर आप इनकार करते हैं तो आपकी बड़ी माँ सिर सबके सामने शर्म से झुक जाएगा। जो हुआ उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप अपनी बड़ी माँ पर विश्वास कर सकते हैं, हम कभी आपके लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं लेंगे। आरवी हर तरह से आपके और हमारे घर के लिए सही है। वो अंशिका को माँ का प्यार दे सकती है, बहुत प्यारी बच्ची है। हमारे लिए उनका हाथ थाम लीजिए, वरना उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी बड़ी माँ की ज़ुबान का मान रख लीजिए बेटा, बस इतना कर दीजिए हमारे लिए, उसके बाद हम कभी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। इतना कहकर वो चुप हो गईं। शान ने अब उन्हें देखकर नाराज़गी से कहा, आप सब जानबूझकर कर रही हैं ना, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके आप मुझसे अपनी बात मनवाना चाहती हैं? आप जानती थी मैं कभी शादी नहीं करूँगा, इसलिए आपने ये रास्ता चुना अपनी बात मनवाने का। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हमें आरवी पहली नज़र में आपके लिए पसंद थी, ये बात सच है, पर उनका रिश्ता हो चुका था तो हमने इस ख्याल को छोड़ दिया। उस दिन सबके सवाल करने पर हमने वो कहा क्योंकि हम जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर आज जो हुआ उसके बाद हमें मजबूरन ये करना पड़ा। हमने जिम्मेदारी ली थी इस शादी की, तो अगर इसमें कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी ही है। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं कि आपकी बड़ी माँ ने ज़ुबान दी है कि वो अपने बेटे से उस बच्ची की शादी करवाएंगी। अगर आप इनकार करते हैं तो हम सबके सामने झूठे बन जाएंगे, पर कोई बात नहीं, आपका जो फ़ैसला होगा हमें मंजूर होगा। पर अगर आज इस बच्ची की ज़िंदगी हमारी वजह से बर्बाद हो गई तो हम खुद को नज़रों में गिर जाएंगे और हो सकता है हमारा ये गिल्ट हमें जीने ना दे और आप अपनी बड़ी माँ को हमेशा के लिए खो। उन्होंने इतना कहा ही था कि शान ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं बड़ी माँ, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप चाहती हैं कि मैं ये शादी करूँ तो ठीक है, मैं ये शादी करूँगा, पर सिर्फ आपके लिए। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, ये नाम की शादी आपके लिए कर रहा हूँ तो मुझसे बदले में कोई उम्मीद मत रखिएगा। वो लड़की उस घर में आपकी बहू बनकर रहेगी, पर उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं होगा और आप दोबारा मुझे किसी बात के लिए मजबूर भी नहीं करेंगी। अगर इसके बाद भी आपको ये शादी करवानी हो तो करवा दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अर्पिता जी सोच में पड़ गईं। उन्होंने खुद से ही कहा, हमें अपने महादेव पर पूरा विश्वास है, अगर उन्होंने आप दोनों को मिलवाया है तो वही आप दोनों के बीच सब ठीक करेंगे। आरवी इतनी अच्छी है कि उनके साथ रहने के बाद भी आप उनसे मुंह फेर कर रह सके, ये संभव नहीं है। अभी आप दोनों इस बंधन में बन जाएं, यही बहुत है हमारे लिए। अब उन्होंने शान को देखते हुए कहा, ठीक है, हम कभी आपको किसी बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे, पर आपको भी वादा करना होगा कि आप आरवी की इज्जत करेंगे। शान ने बेमन से हाँ में सर हिला दिया। अर्पिता जी अनुपमा जी से बात करने के बाद शान के साथ वहां से निकल गईं। करीब दो घंटे बाद शादी के वेन्यू पर शान की गाड़ी आकर रुकी। घर के पास वाले मैरिज हॉल में ही शादी की तैयारी की गई थी। वहां बस घर के कुछ रिश्तेदार ही मौजूद थे, बारात आई नहीं थी और आस पड़ोस के लोग खाना खाकर जा चुके थे। शादी सिंपल तरीके से करने का फैसला लिया गया था क्योंकि ये शान की डिमांड थी। अनुपमा जी और रजनी जी ने आगे आकर शान की नज़र उतारी, फिर उसकी आरती उतारकर उसका स्वागत किया। शान तो सब मजबूरी में कर रहा था तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर अर्पिता जी बहुत खुश थी। हर शादी की तरह इस शादी में भी आरवी की कजिन सिस्टर्स ने आगे आकर शान का रास्ता रोक दिया और मुस्कुराकर बोली, जीजू इतनी भी क्या चलती है, अंदर जाने की, पहले नेक निकालिए तभी अंदर जाने को मिलेगा। अनुपमा जी ने उन्हें हटाना चाहा, वहीं शान उन्हें घूर कर देख रहा था। अर्पिता जी ने मन ही मन कहा, ये लड़का भी ना,
ऐसे देख रहा था जैसे इन्हें कच्चा ही खा जाएगा। अब हमें ही सब संभालना पड़ेगा। उन्होंने झट से अपने पर्स से पैसे निकालकर उन लड़कियों की हथेली पर रख दिया तो वो खुश होकर एक तरफ हो गईं। शान को लेकर अर्पिता जी अंदर आईं। दोनों स्टेज पर चले गए। कुछ देर में रश्मि के साथ आरवी ने वहां कदम रखा। सुर्ख लाल रंग का जोड़ा उसके गोरे बदन पर बहुत खिल रहा था। बालों को जुड़े में बांधा हुआ था जिस पर लगे गहरे की महक वहां अपनी खुशबू फैला रही थी। मांग में सोने का मांगटीका, उसके नीचे माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, लाइट ब्राइडल मेकअप, नाक में बड़ी सी नथ जिसने उसके गुलाबी लबों को आधा ढक दिया था, काजल से सने भूरी भूरी आंखें जिन्हें पलकों का बादल ने ढका हुआ था, लब हल्के से कांप रहे थे जो उसकी नर्वसनेस को दिखा रहे थे, कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके, गले में हार, ये सब गहने और यहाँ तक का शादी का ये जोड़ा भी अर्पिता जी ने उसे दिया था जो उन्होंने अपनी बहू के लिए बनवाए थे। पैरों में पहनी भारी पायल की छनछन की आवाज वहां मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। आरवी के साथ और भी लड़कियां थे जो उसे देखता बस देखता ही रह जाता। आखिर वो लग ही इतनी सुंदर रही थी कि उसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएं। पर हमारे दुल्हे मियां ने तो एक नजर उसे देखा तक नहीं था। आरवी स्टेज के पास पहुंच गई पर शान आगे नहीं आया तो अर्पिता जी आगे आ गईं। उन्होंने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, बिल्कुल आसमान में चमकते चांद जैसी खूबसूरत लग रही हैं आप। उनकी बात सुनकर आरवी हल्का सा मुस्कुरा दी। अर्पिता जी उसे स्टेज पर लेकर गई और शान के आगे खड़ा कर दिया। आरवी की हिम्मत नहीं हुई कि नजरें उठाकर एक बार उस शख्स को देख ले जिसकी दुल्हन बने वो उसके सामने खड़ी थी। रश्मि वरमाला ले आई तो अर्पिता जी ने शान को देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटा वरमाला पहनाइए। उनके कहने पर शान ने बिना किसी भाव के वरमाला ली और उसके गर्दन में डाल दी। सबने तालियां बजाई। अनुपमा जी के कहने पर आरवी ने भी वरमाला पहना दी। सबने उन पर फूल डाले, तालियां बजाई। उसके बाद जहां शान को मंडप पर लेकर चले गए वहीं आरवी को वहीं बने कमरे में ले गए। शान ने फिलहाल शेरवानी पहनी हुई थी।
पंडित ने मंत्र शुरू किए, साथ ही छोटी मोटी रस्में भी होने लगी जो लड़के को करनी थी। वहीं दूसरी तरफ आरवी उस रूम में चुप सी बैठी थी। तभी रश्मि ने कुछ सोचते हुए कहा, आरू मुझे तो लगता है तू जीजू के लिए ही बनी है। उसकी बात सुनकर आरवी उसे हैरानी से देखने लगी तो उसने मुस्कुराकर आगे कहा, देख कल मैंने यूं ही तेरी मेहंदी पर एस लिख दिया था और जीजू का नाम भी एस से शुरू होता है। आज जो हुआ उसके बाद मैं भी डर गई थी, पर फिर भगवान ने जीजू को भेज दिया और उन्होंने उस कमीने को क्या धोया है। हाय मुझे तो मज़ा ही आ गया, उसने खुश होते हुए आगे कहा। जब तेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था तब वो तेरे लिए भिड़ गए, अब तो तू उनकी पत्नी बन जाएगी, सोच कितना ध्यान रखेंगे वो तेरा। पर एक बात है, वो ना थोड़े खड़ूस लग रहे हैं तो तुझे उन्हें सुधारने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर ओवरऑल वो ठीक लग रहे मुझे। बाकी तो तू उनके साथ रहेगी तो तुझे पता चल ही जाएगा। बस अब तो पुरानी बातों को भूलकर इस रिश्ते को दिल से अपना लेना, नई खुशियां तेरा इंतजार कर रही हैं। वो यूं ही उससे बात करती रही पर आरवी कुछ और ही सोच रही थी। कुछ देर बाद उसे मंडप में बुलाया गया, मंत्र शुरू हुए, उसके हाथ पीले किए गए। उसके बाद अनुपमा जी ने आगे आकर कन्यादान की रस्म पूरी की। इस घड़ी में आरवी की आंखें नम हो गई थी, वहीं अनुपमा जी की आंखें भी बहने लगी। धीरे धीरे मंत्रों के बीच शादी की रस्में पूरी होती चली गई। सब वहीं बैठे इस शादी को एंजॉय कर रहे थे। रिश्तेदारों में जो महिलाएं थीं वो ब्याह के गीत गा रही थीं। शान किसी रोबोट के तरह सब किए जा रहा था पर बिना किसी भाव के। रात के अंधेरे को पार करके सूरज की किरणें वहां बिखर कर सवेरे का आगाज करने लगी। पंडित जी के कहने पर दोनों ने फेरे लेते हुए वचनों को दोहराया। जहां शान बस फॉर्मेलिटी निभा रहा था वहीं आरवी दिल से सभी वचनों को दोहरा रही थी। शादी चाहे जिन हालातों में क्यों ना हो रही हो पर उसकी शादी हो रही थी, यही उसके लिए सबसे बड़ी सच्चाई थी। और अब उसने दिल से इस रिश्ते को अपना लिया था। सात फेरों के पूरे होने के बाद शान ने उसे मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग को सुर्ख लाल रंग के सिंदूर से सजा दिया। आरवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से दो बूंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। इस बात की खुशी थी कि उसकी मांग में जिसके नाम का सिंदूर सजा है वो विहान नहीं है। शादी संपन्न हुई। अर्पिता जी के कहने पर शान ने आरवी के साथ बिना और नाटक किए चुपचाप पहले पंडित जी के फिर अनुपमा जी के पैर छुए। उन्होंने दोनों को ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर शान के आगे हाथ जोड़ते हुए भारी गले से बोली, बहुत बहुत आभार बेटा जो आपने हमारी बेटी का हाथ इस परिस्थिति में थामा, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। शान ने जाने क्या सोचकर उनकी हथेली को पकड़कर नीचे करते हुए विनम्रता से कहा, आपको मेरे आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बड़ी हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, बड़ी माँ ने आपको वचन दिया था और मैंने उसी वचन को निभाया है। भगवान आप जैसा बेटा सबको दे, उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो अब अर्पिता जी ने आगे आकर मुस्कुराकर कहा, बस बस अपने इन आंसुओं को बचा कर रख, अपनी बेटी की विदाई में बहाइयो और अब खुश हो जा, तुझे भी भगवान ने एक बेटा दे दिया, अब से शान तेरा भी बेटा है। उनकी बात सुनकर अनुपमा जी मुस्कुरा दी। अब शान और आरवी ने अर्पिता जी के पैर छुए
तो उन्होंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद जहां आरवी को घर ले जाया गया, वहीं शान वहीं रुक गया। कुछ देर बाद विदाई का मुहूर्त था, सब तैयारियां की गईं। अब तक शान भी अर्पिता जी के साथ आरवी के घर पहुंच गया था। दोनों ने आरवी के पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद भी ले लिया था। आरवी का सामान कार में रखा जा चुका था और शान एक तरफ खड़ा अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए सबके सवालों के जवाब दे रहा था। वहां आरवी के रिलेटिव के सभी मेल मेंबर्स मौजूद थे और उनके उल्टे सीधे सवालों से शान इरिटेट हो रहा था। अर्पिता जी अंदर थीं। कुछ देर में आरवी को लेकर सभी औरतें वहां पहुंचीं। आरवी पहले रश्मि के गले लगकर रो रही थी। अनुपमा जी रजनी जी के साथ उसके पीछे जाकर खड़ी हो गईं। बाकी औरतों ने भी अपना आंचल फैला दिया। आरवी ने अपनी हथेली में खील और बताशों को भरते हुए उसे पीछे की तरफ उछाल दिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अनुपमा जी भी रो रही थी। तीन बार ऐसा करने के बाद आरवी पलटकर अपनी माँ के सीने से लगकर रो पड़ी। काफी देर तक वो उनसे लिपटकर रोती रही। सबने उसे उनसे अलग करने की कोशिश की, पर वो उन्हें छोड़ नहीं रही थी। अर्पिता जी ने आगे आकर उसे उनसे अलग किया और अपने गले से लगाकर बोली, हम आपसे वादा करते हैं कि कभी आपको अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। हम आपको अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। आरवी अब भी सुभगती रही। अर्पिता जी के कहने पर शान ने आगे आकर अनुपमा जी के पैर छुए, फिर गाड़ी में बैठ गया। अर्पिता जी ने आरवी को पीछे की सीट पर बिठाया, फिर अनुपमा जी को शांत करने के बाद खुद उसके साथ बैठ गई। कुछ ही सेकंड्स में गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई। इसके साथ ही आरवी का मायका, उसकी माँ उससे पीछे छूटते चले गए और ये सब सोचते हुए उसके आंसुओं की रफ्तार बढ़ती चली गई। अर्पिता जी उसे संभालने लगी। वहीं शान बिना किसी भाव के गाड़ी ड्राइव कर रहा था और कार अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। टू बी कंटिन्यूड।